അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ മൻ കാന നബിയൻ വആദമു ബൈനൽ മായ് വത്തീൻ വഅലാ ആലിഹി വഅസ്ഹാബിഹി അജ്മഈൻ അമ്മാ ബഅദ് ഫഅഊദു ബില്ലാഹി മിനശ്ശൈത്വാനിർ റജീം ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العظيم بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد صلاة دائمة بدوام الملك الحي القيوم نبی کا نام ہے ہر جا خدا کے نام کے بعد نبی کا نام ہے ہر جا خدا کے نام کے بعد کہیں درود سے پہلے کہیں سلام کے بعد نبی ہیں سارے نبی پر شہ انام کے بعد نبی ہیں سارے نبی پر شہ انام کے بعد کہ دانا دانا ہے تسبیح کا امام کے بعد ہر ایک روح نے بے شک بلا کہا لیکن ہر ایک روح نے بے شک بلا کہا لیکن رسول پاک علی روح السلام کے بعد نبی کا نام ہے ہر جا خدا کے نام کے بعد کہیں درود سے پہلے کہیں سلام کے بعد من علینا ربنا اذ بعث محمد ایدہ بایدہ ایدنا باحمد ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا صلوا علیہ دائما صلوا علیہ سرمدا صلی اللہ علی النبی الامی والی صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. آج کی مبارک اور مقدس رات اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ جلوہ گر ہے اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ کے مطابق یہ رات شب قدر سے بھی افضل ہے, اس لیے کہ شب قدر میں قرآن آیا اور اس میں صاحب قرآن تشریف لائے. اس مبارک اور مقدس رات میں ہم سب اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کرنے کے لیے, سننے کے لیے, سنانے کے لیے جمع ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. ارشاد ربانی ہوا, قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تحقیق بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب. اللہ کی طرف سے تمہارے پاس دو چیزیں آئیں, ایک نور اور ایک روشن کتاب. مفسرین نے لکھا کہ نور سے مراد ذات پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, اور کتاب مبین سے مراد قرآن مجید فرقان حمید. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دو شانیں ہیں, ایک ہے جسمانی شان اور ایک ہے نورانی شان. جسمانیت کے اعتبار سے حضرت آدم کی نسل ہیں اور نورانیت کے اعتبار سے حضرت آدم کی اصل ہیں. حضرت آدم نہیں تھے اور حضور تھے, کیا تھے؟ نور تھے. اللہ تبارک و تعالی کی سب سے پہلی تخلیق حضور کا نور. فرمایا اول ما خلق اللہ نوری, اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا. پھر فرمایا انا من نور اللہ والخلق کلہم من نوری, میں اللہ کے نور سے ہوں اور ساری کائنات میرے نور سے. یعنی میری تخلیق کا سبب اللہ کا نور ہے اور کائنات کی تخلیق کا سبب میرا نور ہے. اگر اللہ کا نور نہ ہوتا تو میں نہ ہوتا, اور میرا نور نہ ہوتا تو کائنات نہ ہوتی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بتائیے کہ اللہ نے ہر چیز سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ सबसे पहले किस चीज को पैदा किया? सरकार ने फरमाया या जाबिरु इन्नल्लाह ताला खलका कबल अशियाए नूर नबी का मिन नूर ही। ए जाबिर, अल्लाह ने हर चीज से पहले तेरे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा की। तेरे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा की। जब न जमीन थी न आसमान, न चरी न परी, न जमादात हैवानात न बतात, लौह कलम कुर्सी कोई चीज नहीं थी, अल्लाह ने सबसे पहले नूर मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया और इस नूर को रखा हजरत आदम अलैहि सलाम की पेशानी में। अब हुक्म दिया उसजुदू ले आदम, आदम को सजदा करो। कुरान कहता है फसजदू इल्ला इबलीस, सब के सब सजदे में गिर गए सिवाय इबलीस के। जानते हो ना इबलीस को? मुलाकात होती है रोज, बहुत अच्छी तरह जानते। सिवाय इबलीस के इसने कहा नहीं, मैं नहीं करूं। और क्यों नहीं? आना खैरुम मिन्हु, मैं इससे बेहतर हूं। अच्छा तो बेहतर है। फखरुज मिन्हा फइन्नका रजीम व इन्ना अलैका लअनती इला यौमिद्दीन, निकल जा तू मर्दूद है, कयामत तक तुझ पर लानत, कयामत तक लानत, मर्दूद हो गया। अच्छा जब अल्लाह ने हुक्म दिया ना उस चुदूले आदम, आदम को सजदा करो, तो नजर फरिश्तों की भी उठी और नजर शैतान की भी उठी। फरिश्तों की नजर उठी तो उन्हें हजरत आदम अलैहि सलाम की पेशानी में नूर मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर आया, सजदे में गिर गए। इसको नूर नजर नहीं आया, खाक ही नजर आई। इसने कहा मैं इससे बेहतर हूं। अच्छा फरिश्ते जब सजदे में गिरे और उन्होंने सजदे से सर उठाया तो ये उसी तरह खड़ा बैठा। उन्होंने कहा अच्छा वो दोबारा सजदे, दोबारा सजदे। एक सजदा अल्लाह के हुक्म से, दूसरा शुक्राने के तौर पर। मौला तेरा करम है, हमने इसकी तरह नहीं किया है, तेरी नाफरमानी नहीं की, फिर सजदे में। इसीलिए हर रकात में दो सजदे है ना, दो सजदे करते हो, ये एक ही करके भाग जाते, दोनों करते हो, तो इसीलिए दो रख दिए गए। अच्छा जो सजदे का हुक्म था वो हजरत आदम अलैहि सलाम को था। किसको था? हजरत आदम को नहीं, हजरत आदम अलैहि सलाम की पेशानी में नूर मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस नूर की ताजीम ना करने की वजह से मर्दूद हो गया, ताजीम ना करने की वजह से मर्दूद हो गया। अच्छा मसला क्या है? देखो जुर्म एक ही है, इसलिए दफा भी एक ही लगेगी। कैसे? वो झुकने के लिए तैयार नहीं था और ये उठने के लिए तैयार। सलाम में नहीं उठते ना, नहीं जिन्हें क्या जरूरत है खड़े। अक्सर जगह देखा गया सारे लोग खड़े हैं, दो बैठे हुए, दो बैठे हुए। क्यों जी? हम तो नहीं खड़े, हम क्यों खड़े हो? अच्छा यहीं से बता दिया उन्होंने कि हम बदबख्त हैं, बेअदब। वो झुकने के लिए तैयार नहीं, ये उठने के लिए तैयार नहीं। वो तो जन्नत में था, ताजीम नहीं की, निकाल दिया गया, निकाल दिया ना। फखरुज मिन्हा फइन्नका रजीम, अल्लाह ने निकाल दिया, ताजीम नहीं की, जन्नत से निकाल दिया, बाहर कर दिया। ये तो पहले ही बाहर है, अंदर जाएंगे कैसे? जो अंदर था ताजीम ना करने की वजह से जन्नत से बाहर हो गया, तो जो बाहर है और ताजीम नहीं करेंगे अंदर जाएंगे कैसे? समझ में आई बात? इसलिए ताजीम करो ताकि दाखला मुमकिन हो जाए, दाखला मुमकिन हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हम रसूलुल्लाह की जन्नत रसूलुल्लाह की। ठीक, खैर बहरहाल अब मैं जरा मुख्तसर करूं। अल्लाह ताला ने सबसे पहले हुजूर के नूर को पैदा किया, ठीक है ना? और सरकार ने फरमाया कुन तो नबीयम व आदम बैनल माए वत्तीन, मैं नबी था जब आदम मिट्टी और पानी के दरमियान थे। कुन तो नबीयम व आदम बैनल रूह व जसद, मैं नबी था जब आदम जिस्म और रूह के दरमियान थे। अब दुनिया के पहले इंसान हजरत आदम, दुनिया के पहले आदमी हजरत आदम, दुनिया के पहले बशर हजरत आदम,
یعنی آدمیت کی ابتدا ہو رہی ہے حضرت آدم سے، بشریت کی ابتدا ہو رہی ہے حضرت آدم سے، انسانیت کی ابتدا ہو رہی ہے حضرت آدم سے۔ ابھی دنیا کا پہلا آدمی وجود میں نہیں آیا اور حضور فرما رہے میں نبی تھا، میں نبی تھا۔ کیا مطلب؟ ہماری بشریت ہماری حقیقت ہے اور نبی کی بشریت نبی کی صفت ہے۔ حقیقت نہ ہو چھن جائے تو آدمی ختم ہو جائے، لیکن صفت کے چھننے سے آدمی ختم نہیں ہوتا۔ سمجھ میں آئی؟ ہماری بشریت ہماری حقیقت ہے اور نبی کی بشریت نبی کی صفت ہے۔ حضور کی حقیقت نورانیت ہے، اللہ جانے یا رسول اللہ جانے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال یہ نور حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا گیا۔ اب وہاں سے یہ نور منتقل ہوا، کہاں منتقل ہوا؟ مسلسل منتقل ہوتا رہے گا نیک بندوں میں، خدا کے مرثیوں پیغمبروں میں، حق پرستوں میں، نشان اسلام کا اللہ نے عالم میں رکھا ہے کہ نور احمدی پیشانی آدم میں رکھا ہے، کہ نور احمدی پیشانی آدم میں رکھا ہے۔ اب نور منتقل ہو رہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں آئے، پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ، پھر حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، پھر موسیٰ کلیم اللہ، پھر عیسیٰ روح اللہ۔ ایک نبی سے دوسرے نبی میں منتقل۔ اور اس نور کی شان یہ تھی کہ جس کے صلب میں یہ نور آتا تھا اس کی پیشانی چمکتی تھی، اور جس کے رحم میں یہ نور آتا تھا اس کے جسم سے خوشبو آتی۔ ہوتے 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 یہ نور پہنچا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی، ان کی پیشانی چمکنے لگی، سرکار کے والد گرامی پیشانی چمکنے لگی۔ جدھر سے گزرتے لوگ دیکھنے کے لیے کھڑے ہو جائے، حسن و جمال بے مثال۔ ایک عورت تھی جس کا نام تھا فاطمہ بنت مرہ، جب آپ گزرتے تھے تو وہ کھڑی ہو جاتی راستہ روک کر، عبداللہ میں تم سے محبت کرتی ہوں، مجھ سے نکاح کر لو، میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ ادھر ادھر گزر جاتے، پھر روکتی، پھر گزر جاتے۔ ایک دن آپ نے کہا کہ بھائی میں بغیر والدین کی رضا مندی کے میں شادی نہیں کر سکتا، میں ان سے پوچھوں گا، اگر رضا مندی ہوئی تو کر لیں گے۔ پھر آپ گزر گئے، کچھ دن تک آپ کا گزر نہیں ہوا، اور اسی دوران آپ کا نکاح ہو گیا حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور وہ نور منتقل ہو گیا حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے رحم۔ اب اس کے بعد جب گزرے تو وہ عورت کھڑی، اس نے دیکھا لیکن منہ ادھر کر لی، پہلے تو آگے بڑھتی تھی نا کہ مجھ سے نکاح کر لو، میں تمہیں چاہتی ہوں، میں محبت کرتی ہوں، اب اس نے منہ ادھر کر لیا۔ آپ حیران ہوئے، فرمایا فاطمہ آج کیا بات ہے؟ ہر دفعہ تو تم مجھے روکتی تھی، نکاح کا پیغام دیتی تھی، آج کیا بات ہوئی؟ تو جانتے اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا وہ جس کے نور سے تیری چمکتی تھی یہ پیشانی، اسی کی تھی میں طالب اور اسی کی تھی میں دیوانی، مگر میں رہ گئی محروم، قسمت میری پھوٹی ہے۔ سنا ہے آمنہ نے وہ نعمت تجھ سے لوٹی ہے، سنا ہے آمنہ نے وہ نعمت تجھ سے لوٹی ہے۔ میں تو وہ نعمت اس نور کی طالب تھی، وہ نور تو آمنہ نے لے لیا، وہ تو لوٹ لی نعمت، اب میں کیا کروں؟ خیر آپ گزر گئے۔ اہل مکہ جو تھے نا وہ تجارت کرتے تھے، مکہ میں کوئی زراعت باغات اس قسم کی چیزیں ایسی نہیں تھی، पहाड़ी, आप देखें अभी भी आप जाके देखें तो पहाड़ी पहाड़ है ना, तो उस जमाने में भी पहाड़ थे। अहले मक्का तिजारत करते थे दूसरे मुल्कों से, यमन, शाम, इराक काफले जाते थे, माल लेकर आते थे, इधर का माल उधर बेचा, उधर का उधर, ये उनका जरिया माश था। तो हुजूर अलैहिस्सलाम के वारिद माजिद हजरत अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला निकाह के बाद चंद दिन रहे और चंद दिन के बाद सफर पर रवाना हो गए। कौन सा सफर? तिजारती सफर, चले गए। वहां जाकर बीमार हो गए और उसी बीमारी में उनका विसाल हो गया, और विसाल भी हुआ, तदफीन भी वहीं हो गई। ऐसा नहीं कि जिसमें मुबारक यहां पर आया हो उनके घर, होता है ना कि भाई चलो वापस ले आओ, अब उस जमाने में ऐसी कोई सूरत नहीं होगी। अब आप जरा सा गौर करें कि एक जवान खूबसूरत लड़की जिसका निकाह हुआ हो, कितने अरमान उसके दिल में हो, और उसी तरह हसीनो जमील उसका शौहर जो हुस्न जमाल में बेमिसाल मोहब्बत करने वाला, वो सफर पर जाए और बीवी इंतजार में कि अभी वो आने वाला है, आने के बजाय उसके इंतकाल की खबर आ जाए, इंतकाल की खबर, उसके दिल पर कैसा सदमा गुजरा। और यही नहीं कि अगर शौहर का जनाजा आ जाए तो उसको देखकर कुछ अपना गम गलत कर ले, आखिरी शक्ल देख ले, होता है ना कहते जी आखिरी शक्ल तो देख ले कम से कम, ये भी नहीं। चंद दिन साथ रहे, उसके बाद गए इंतजार में कि वो आ रहे हैं, आने के बजाय इंतकाल की खबर आ गई, ना जनाजा आया ना शक्ल देखी, तदफीन भी वहीं हो। ये गम का पहाड़ टूटा सैयदा आमना रदी अल्लाह ताला अन्हा, जरा सा गौर करो उनके दिल पर कितना बड़ा सदमा। लेकिन रब्बे कायनात जब किसी से कुछ लेता है तो बहुत कुछ अता भी कर देता, उसकी शान कहते इन्नमा अल उसरी युसरा, हर तंगी के साथ आसानी है। ये नहीं कहा तंगी के बाद, माल उसरी युसरा, तंगी के साथ आसानी है। इधर गम हुआ और उधर क्या हुआ, फरमाती मुझे हर रोज एक नबी की जियारत होती, वो तशरीफ लाते थे, मैं आदम हूं, आमना गम ना करो, तुम्हारे पेट में जो बच्चा है इस उम्मत का नबी है। दूसरे नबी तशरीफ लाते, आमना गम ना करो, तुम तो पैगंबर आखिरुज़ ज़मा की माँ बनने वाली, कोई कहता तुम सैयदुल अंबिया की माँ बनने वाली हो, तसल्ली देते थे, हजरत आमना खुश हो जाते। अब विलादत का वक्त आ गया, फरमाती जब विलादत का वक्त आया तो मशरिक और मगरिब रोशन हो गए, हर तरफ नूर ही नूर हो गए, यहां तक कि मेरे घर की छत दरमियान में हाई ना रही और मैंने वहीं लेटे लेटे बसरा के मोहल्ला देख दे। फिर मैंने देखा कि मेरे घर की छत जो दरमियान में हाई नहीं थी, यानी घर के ऊपर जो आसमान है, सारे सितारे वहां आकर जमा हो गए। कहां जमा हुए? जहां आका की विलादत होने वाली, चरागा हो रहा है, हम भी चरागा करते हैं ना, हम लाइटें जलाते हैं, हम बल्ब रोशन करते हैं, हम अपनी हैसियत के मुताबिक करते हैं, रब ने अपनी शान के मुताबिक किया। मेरा महबूब आ रहा, सितारों जमा हो जाओ, सारे सितारे जमा हो गए उस मकान के ऊपर जहां आका की विलादत होने वाली। अच्छा हुई कब? सुबह सादिक के वक्त, सुबह सादिक, कौन सा वक्त? देखा है कभी? उठोगे तो देखोगे ना, 9 बजे उठोगे तो क्या खाक देखोगे? हाँ आज देख सकते, आज इस रात की बरकत से देख लो। सुबह सादिक का वक्त वो होता है कि अंधेरा छट रहा है, रोशनी फैल रही है, अगर लाइट भी आप बंद कर देना, हल्का हल्का अंधेरा और हल्की हल्की रोशनी, यानी रोशनी फैल रही है, अंधेरा छट रहा। अब ये बात किताब में नहीं लिखी, लेकिन ये मैं कह रहा हूं, मेरा ईमान ये कहता है कि रात ने कहा होगा ये सआदत मुझे मिले, दिन ने कहा होगा मुझे मिले। अल्लाह ने ऐसे वक्त में अपने हबीब को भेजा, दोनों को सआदत मिल गई। रात के जाने का वक्त, दिन के आने का वक्त, और इसमें हिकमत ये थी, अंधेरा छट रहा है, रोशनी फैल रही है, खालिक़े कायनात बताना चाहता था अब जुल्मतों के अंधेरे छट जाएंगे, मेरे हबीब का नूर फैल जाएगा, अब इस्लाम का नूर फैलेगा, अब कुरान का नूर फैलेगा, अब रहमान का नूर फैलेगा, अंधेरे छट रहे। उस वक्त विलादत हो रही, फरमाती मैंने देखा सारी फिजा मर्दों से भरी हुई, जमीन से आसमान तक मुझे आदमी आदमी नजर आई। हजरत आमना फरमा रही, मैं हैरान, ये कौन है? और वो धीमी धीमी आवाज में कुछ पढ़ रहे, कौन? अल्लाह के फरिश्ते। फरिश्तों की सलामी देने वाली फौज गाती थी, जनाबे आमना सुनती थी ये आवाज आती थी। फरिश्ते क्या कर रहे, क्या कह रहे थे फरिश्ते? दुरूद और सलाम के नजराने पेश कर रहे। फरिश्ते कह रहे थे, सलाम आमना के लाल ऐ महबूबे सुबहानी, सलाम फख्रे मौजूदात फख्रे नौ इंसानी, सलाम फख्रे मौजूदात फख्रे नौ इंसानी। खुश हो रहे, दुरूद सलाम के नजराने पेश कर। फिर हजरत आमना फरमाती, मैंने देखा मेरा पूरा कमरा हसीन और जमील औरतों से भर गया, एक से एक खूबसूरत। मैं कहने, कौन औरतें कहां से आ गई? अचानक एक औरत आगे बढ़ी, उसने मुझे सलाम किया, आमना मैं मरियम हूं, हजरत ईसा अलैहि सलाम की वालदा। दूसरी ने कहा, मैं फिरौन की बीवी आसिया हूं। तीसरी ने कहा, मैं मूसा अलैहि सलाम की बीवी सफूरा हूं, और ये बाकी सब जन्नत की हूरें हैं, अल्लाह ने हमें तुम्हारी खिदमत के लिए भेजा। गौर करो, जिस औरत की खिदमत के लिए जन्नत की सरदार औरतें आईं और जन्नत की हूरें आईं, उस औरत का अपना मकाम क्या हो? सैयदुल अंबिया की वालदा हैं, शहनशाह कौन मका की वालदा हैं, महबूब रब्बुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा। सरकार की विलादत हुई, नूर ही नूर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते, मैं हरम में सो रहा था, अचानक शोर हुआ, मैं बेदार हुआ। मैंने कहा, क्या शोर है, क्यों चीख रहे तुम लोग? कहा, सरदारे मक्का, आपको क्या पता है, ये जितने बुत हरम में थे सब औंधे मुंह गिर गए। हम एक को खड़ा करके उधर जाते हैं, ये फिर गिर जाते हैं, इसको खड़ा करके इधर जाते हैं, ये फिर गिर जाते, सारे बुत गिर गए। और फरमाते, मैंने बैतुल्लाह को देखा, बार बार उस मकाम की तरफ झुकता था जहां हुजूर की विलादत हुई। काबा भी खुश हो रहा है, मुझे बुतों से पाक करने वाला आ गया, मेरी अजमत को चार चांद लगाने वाला आ गया। हम सब किधर झुकते हैं? काबे की तरफ। और काबा किधर झुका? हुजूर की तरफ। इसलिए आला हजरत ने लिखा था, हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो। तुमने उसको देखा जिसकी तरफ तुम झुकते थे, अब आओ उस नबी का रोजा देखो जिनकी तरफ काबा भी झुक रहा। काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो। हर तरफ खुशी मनाई जा रही है। जो जानवर मशरिक में रहते थे मगरिब की तरफ, जो मगरिब में रहते थे मशरिक की तरफ दौड़े, खुशी लेकर खुश हो जाओ। क्यों? मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए, बारान रहमत बरसा, हवाएं चली, खेतियां सरसब्ज हुई, जानवरों को चारा मिला, इंसानों को रोजगार मिला, हर तरफ खुशहाली हो गई। मेरे रसूल इस दुनिया में जलवा कर हुए, नूर ही नूर हो गए, नूर ही नूर हो गए। हजरत आमना फरमाती है, तीन झंडे आसमान से फरिश्ते लेकर उतरे, तीन, एक बैतुल्लाह की छत पर, एक बैतुल मुकद्दस पर, और एक तूरे सीना पर गाड़ दिया गया। झंडे कहां से आए? आसमान से। कौन लेकर आया? फरिश्ते। किसने भेजा? अल्लाह ने। अल्लाह चाहता है मेरे हबीब की विलादत पे झंडे लगाए जाए, इसीलिए तो हम लगा रहे हैं। ये लगाना तो फरिश्तों की सुन्नत है और अल्लाह का हुक्म है। फरिश्ते अल्लाह के हुक्म के सिवा कोई काम नहीं करते। तीन झंडे लगा दिए, उन्हीं की सुन्नत हम अदा कर रहे। तो पता नहीं क्यों इनको तकलीफ हो रही है, क्यों लगा दिए, क्यों लगा दिए, क्यों लगा। पाकिस्तान के झंडे पे एतराज नहीं है, हाँ हुजूर का झंडा लगा दे तो एतराज। पाकिस्तान के झंडे पे क्यों एतराज नहीं है कि उसके साथ डंडा भी है, हुकूमत का डंडा भी है, हैं? मार पड़ेगी ना, क्यों क्यों एतराज कर रहे हो उस पे नहीं है? हाँ हुजूर का झंडा लगा दे तो कौमी तराने पे खड़े हो जाएंगे सारे, और हुजूर का तराना हो जाए नहीं, ये शिर्क है। ये क्या बात, इंसाफ है ना? फिर इंसाफ ये करो कि उस पर भी खड़े ना हो, बैठे रहो, पता चलेगा कितनी पिटाई लगेगी अगर खड़े नहीं हुए कौमी तराने पर। खैर बहरहाल, हम तो जो कुछ कर रहे हैं अल्लाह के हुक्म से कर रहे हैं, उसकी मर्जी के मुताबिक कर रहे हैं। सबने खुशियां मनाई, चरिंद परिंद जमादात हैवानात नबातात पूरी कायनात ने खुशी मनाई सिवाय एक। फिर वही आ गया एक आपका दोस्त, वही वो खुश नहीं था, सर पे खाक डालता हुआ इधर उधर फिर रहा है और कह रहा है मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई, मेरी मेहनत को खत्म करने वाला आ गया। इतनी मुश्किल से इनको बहकाया था, अब वो आ गया जो मेरी सारी मेहनत खाक में मिला दे। तो अब जो खुश हैं वो फरिश्तों के नक्शे कदम पर हैं, और जिन्हें कोई खुशी नहीं है वो उसी के नक्शे कदम पर है, कहने की जरूरत नहीं। सही है ना? वहीं से दो सिलसिले चल रहे हैं, इनका भी कनेक्शन पुराना है, अपना भी कनेक्शन पुराना, वहीं से चल रहा है मसला। अब देखें ना, बहुत सी मस्जिदों में कोई चरागा नहीं, कुछ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सारी मस्जिदें सजी हुई हैं, सब वहीं से पता चल गया जो खुश है वो खुशी मना रहे फरिश्तों के नक्शे कदम पर है, और जो नहीं वो शैतान के नक्शे कदम पर। खैर बहरहाल, हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत हो गई। मैंने बहुत सी चीजें छोड़ दी क्योंकि वक्त कम है। अरब में ये कायदा था कि बच्चे पैदा होते थे वहां से औरतें आती थीं गांव से, बच्चों को ले जाती थीं उजरत पर, इतने पैसे हम लेंगे, हम आपके बच्चे की परवरिश करें। वो चाहते थे कि हमारे बच्चे फसी अरबी बोलें, उन इलाकों में जाएं, अच्छी खुली फिजा में सांस लें, इनकी नशोनुमा हो। हजरत हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा कबीले बनू साद वहां से रवाना हुई, इनके साथ औरतें भी रवाना हुई कि चलो मक्के जाएंगे, वहां के कबाइल के जो सरदार हैं, जो अमीर लोग हैं, उनके बच्चे लेंगे गोद। इनकी सवारी बिल्कुल कमजोर लाकर चलती है, रुकती है, फिर चलती है, फिर रुकती है। औरतों की सवारियां बड़ी ताकतवर हैं, बड़ी तेज दौड़ने वाली। वो आगे निकल गई, फिर पीछे मुड़ के देखा हलीमा क्या हुआ, कहा तुम चलो मैं आ रही। फिर सवारी को भगाती है, वो चलती है, फिर रुकती है, कमजोर सवारी। नतीजा ये हुआ कि औरतें पहले पहुंच गईं मक्के और उन्होंने बड़े बड़े लोगों के बच्चे गोद ले लिए। और हर औरत की ख्वाहिश ये होती थी कि उस बच्चे को गोद ले जो यतीम ना हो, क्योंकि अगर यतीम होगा तो या तो दादा उसकी परवरिश करेगा, या चचा किफालत करेगा, या मामू करेगा, और अगर बाप मौजूद होगा तो मुंह मांगी कीमत मिलेगी, जो हम पैसा कहेंगे बाप देगा। एक दुर्रे यतीम को सबने छोड़ दिया और इधर उधर के बच्चों को लेकर रवाना। हजरत हलीमा सादिया पहुंची, पता चला सारे बच्चे तो चले, बड़ा अफसोस हुआ। एक दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गई अफसोस में। वैसे ही घर में तंग दस्ती थी, खाने को नहीं था, रोजगार नहीं था, परेशानी थी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब आए, सरकार के दादा। फरमाया माई नाम क्या है? कहा हलीमा सादिया। फरमाया वाह, हिल्म और सआदत दोनों जमा हैं, मेरे बेटे को पोते को गोद लोगी, लेकिन वो यतीम है। अब यतीम का नाम सुनकर फिर दिल में सोचा होगा कि यतीम है और ये दादा हैं, पता नहीं कितने पैसे देंगे। कहा ठीक है, मैं अपने शौहर से मशवरा करती हूँ। शौहर के पास गई हूँ, शौहर का नाम था हारिस। हारिस सारे बच्चे तो चले गए जो बड़े बड़े लोगों के थे, अमीरों के थे और ये कबाइल के सरदार के। एक बच्चा रह गया, वो यतीम है, अगर कहो तो उसे गोद ले। हारिस ने कहा हलीमा खाली जाने से तो बेहतर है इसी को ले लो, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। हारिस ने क्या कहा, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। और उधर मशीहत रब्बानी मुस्कुरा रही है, कुछ ना कुछ मिलेगा, तुम इसको लेके जाओ, इसके दम से सब कुछ मिलेगा। तुम इसको लेके तो जाओ, इसके दम से सब कुछ मिलेगा। कहा ठीक है, मैं तैयार। वो लेकर आ गए, घर में ले गए। नबी पाक अलैहि सलातो सलाम सब्ज रंग की चादर में लिपटे हुए आराम फरमाए, उठाकर हजरत हलीमा सादिया की गोद में दे दिया। चेहरे मुबारक से कपड़ा हटाया, आका ने नूरानी आंखें खोल दी। आंखों से नूर निकला, चेहरे से नूर निकला, हलीमा सौजान से कुर्बान हो, ऐसा नूरानी चेहरा तो देखा नहीं था। और मेरा ईमान ये कहता है कि हजरत हलीमा सादिया की नजर पहली मर्तबा जब आका के नूरानी चेहरे पर पड़ी होगी तो उनकी जबान से यही निकला होगा, प्यारी सूरत हंसता चेहरा मुंह से झड़ते फूल, प्यारी सूरत हंसता चेहरा मुंह से झड़ते फूल, चांद सा मुखड़ा नूर सारा पा, चांद सा मुखड़ा नूर सारा पा, हक का वो प्यारा रसूल नबी जी, अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु। उठाया सीने से लगा लिया, बोसा दिया और लेकर चली। जैसे ही सवारी पर बैठी वो उछलने लगी। ये सवारी को क्या हो गया, इतनी कमजोर लाकर और उसके बाद जरा सी एड़ लगाई तो दौड़ना शुरू। वो भी तो जानती है मेरे ऊपर शहनशाह है कौनो मका, मेरे नबी मेरे ऊपर रौनक अफरोज है, दौड़ रही है। ये उसके अंदर ताकत कहां से आ गई और इतनी तेज दौड़ी कि जो औरतें आगे गई थी उनसे भी आगे निकल गई, उनसे आगे निकल गई। औरतों ने कहा हलीमा क्या सवारी बदल ली है, कहा सवारी नहीं बदली, सवार बदल गए, सवार बदल गए। ये तो मेरे आका की शान थी। और फिर पूरा सफर ऐसे गुजरा। हलीमा सादिया फरमाती दरख्तों के नीचे से गुजरते तो शाखें झुक झुक कर आका को सलाम करती थी, उनके चेहरे को बोसा देती थी। दर दीवार से अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह की आवाज आती थी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीय्यल्लाह। अपने अपने तौर पर सब सलाम पेश कर रहे, शजर हजर जमादात हैवानात नबातात जहां से आका गुजर जाते थे झूम झूम कर डालियां शाखें झुक झुक कर सलाम कर रही हैं, अदब से सलाम पेश कर। पूरा सफर ऐसे ही गुजरा। पहुंच गई अपने कबीले, कबीले बनू सात, छोटा सा मकान। अब वहां पहुंची तो जितनी बकरियां हैं सबके थन दूध से भरे हुए, एक बर्तन में निकाला भर गया, दूसरे में भर गया, तीसरे में भर गया, दूध की नहरें बह गई। मेरे रसूल ने कदम रख दिया, करम ही करम हो गया, रहमत ही रहमत हो गई। हजरत हलीमा सादिया फरमाती हैं, एक रात आसमान पर चौदहवीं का चांद चमक रहा, मैंने देखा चांद कभी इधर होता है कभी इधर। आपने चांद को कभी इधर उधर होते हुए देखा, देखोगे कैसे, रमजान के अलावा तो चांद ही नहीं देखते है? हम तो एक दो ही चांद देखते हैं ना, रमजान का या ज़िलहज का या मुहर्रम का या चलो रबी अव्वल का, इसके अलावा तो पता ही नहीं चांद हुआ नहीं हुआ, हमें क्या परवाह, सही है ना। लेकिन चांद को जब भी देखा एक जगह अपने मुस्तकर पर, एक हिलता नहीं। हलीमा सादी कहती मैं देख रही हूँ कभी इधर कभी उधर, मैं हैरान ये चांद को क्या हो गया। और जब नीचे देखा तो मेरे बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने झूले में अंगूठे मुबारक इधर करते हैं चांद इधर हो जाता है, इधर करते हैं तो इधर, इशारों पे हुजूर के। چاند۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان محدث بریلوی اس منظر کو بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں چاند جھک جاتا جدر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، چاہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ اور کیوں اشاروں پہ چل رہا تھا؟ پھر اس کی وجہ بھی بیان کرتے ہیں، وجہ یہ ہے
کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا، اس لیے یہ سراپا نور تھے اور وہ کھلونا نور کا، یہ سراپا نور تھے اور وہ کھلونا نور کا۔
ہمارے بچے کھلونوں سے کھیلتے ہیں، آقا چاند سے کھیل رہے ہیں۔ چاند نے ادھر ادھر ہو کر بتایا میرے بھی تو رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عجیب و غریب واقعات رونما ہوئے۔ ایک دن دوپہر کا وقت ہے، سورج آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، گرمی ہے، شدت ہے، تمادت ہے۔ حضرت علی ماں سعدیہ آئیں، نبی پاک علیہ السلام کو نہیں دیکھا، کہاں گئے؟ ادھر دیکھا ادھر دیکھا، پریشان ہوئی، بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں چلے گئے؟ اسی تلاش میں جب گھر سے باہر نکلی، دیکھا کہ آپ کی بیٹی حضرت شیما سرکار کو گود میں لے کر اندر داخل ہو رہی۔ ان کو غصہ آیا، کہا بیٹی اپنے بھائی کو اس دھوپ میں کہاں لے گئی، اس دھوپ میں کہاں لے گئی؟ اب سنو ان کا جواب۔ انہوں نے کہا ماں دھوپ کیسی، دھوپ کیسی، میرے بھائی کی شان یہ ہے یہ دھوپ میں نکلتے ہیں بادل آ کے سایہ کرتے ہیں، یہ چلتے ہیں وہ بھی چلتا ہے، یہ رک جاتے ہیں وہ بھی رک جاتا ہے۔
اللہ یا رسول،
شکر ہے نعرہ تو لگایا، میں اتنا زور لگا رہا ہوں سارے بیٹھے ہوئے چپ، کسی کو خیال نہیں کہ ایک نعرہ لگا، ایک آدمی کو خیال آیا، چلو شکر۔ تو کہا یہ چلتے ہیں وہ چلتا ہے، یہ رکتے ہیں تو وہ بھی رک جاتا ہے۔ بادلوں نے سایہ کر کے بتایا ہمارے بھی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی برکتیں اتنی ہوئیں کہ اور عورتوں کی بکریاں جاتی تو ان کے تھن دودھ سے خالی، اور حضرت حلیمہ سعدیہ کی آتی بکریوں کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے۔ وہ کہتی کہ ہماری بکریوں کو ادھر چراؤ جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں، وہ سوچتی شاید وہاں چارہ زیادہ ہے، وہاں گھاس زیادہ ہے۔ ان کو کیا پتا تھا کہ یہ چارے کی وجہ نہیں تھی، یہ اس کی وجہ تھی جو حل بے چارے کا چارہ ہے، یہ اس کی وجہ تھی، ان کے دم قدم سے یہ برکت تھی۔ تو سرکار کی برکتیں تھیں۔ غور کرو جن کے نام میں برکت ہے، جن کے ذکر میں برکت ہے، جہاں وہ خود ہو وہاں کتنی برکتیں، وہاں کتنی رحمتیں ہوں۔ اس لیے میں کہتا ہوں آج ساری برکتیں مدینے میں ہیں، ساری رحمتیں مدینے میں ہیں، ساری عظمتیں مدینے میں ہیں، ساری رفعتیں مدینے میں ہیں، ساری نعمتیں مدینے میں ہیں، اس لیے کہ جس کے دم سے ہیں وہ خود مدینے میں۔ پہلے جو جاتا تھا بیمار ہو جاتا تھا، میرے رسول نے قدم رکھ دیا، اب وہ دار الوبا دار الشفا بن گیا۔ جس کو شفا چاہیے مدینے چلے۔ بہرحال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر مبارک تو وہ ہے کہ پوری رات گزر جائے لیکن وہ ذکر ختم نہ ہو، اور رات کی وہ مبارک اور مقدس رات ہے جو شب قدر سے بھی افضل ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس مبارک مقدس رات میں جو کچھ مانگیں گے رب ضرور عطا فرمائے۔ ہم سرکار کی بارگاہ میں یہی عرض کرتے ہیں سلام مصطفیٰ نور مجسم نور یزدانی، سلام مصطفیٰ ذل جمال ذات رحمانی، سلام مصطفیٰ شمع حریم بزم ربانی، سلام مصطفیٰ مسند نشین عرش سبحانی، سلام مصطفیٰ مجموع آیات قرآنی، سلام مصطفیٰ گنجینہ اسرار پنہانی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی پاک علیہ السلام کی سچی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، اسی محبت میں زندہ رہیں اور اسی محبت میں موت عطا فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔